वीतराग विज्ञान नमोताहि जाति भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने पूजूं गे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं गे सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग जिनेंद्र भगवान की भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। भगवान के दर्शन, उनके गुणों का स्मरण, चिंतन और उनके जैसे बनने की भावना, ये सब चीजें उस भक्ति में समाहित हैं। जब भगवान के दर्शन और उनके गुणों का चिंतन करते हैं तो अपने मन में क्या विचार आना चाहिए? तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश, एक विचार ये है। मैंने आज तक अगर संसार में दुख पाया है तो वो मैं आपसे कहने नहीं आया भगवान, उसका कारण मुझे आपके दर्शन से मालूम पड़ गया। अभी तक जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ था तो ये लगता था कि मेरे दुख का कारण कहीं बाहर है, इस संसार में किसी सुख सुविधा के अभाव में मैं दुखी हूं, या कि ठीक परिवार नहीं होने से मैं दुखी हूं, या अन्य और कोई कारण है जिनसे मैं दुखी हूं। अब मुझे मुख्य कारण समझ में आ गया कि तुमको बिन जाने जो कलेश। मैंने भगवान जिनेंद्र के स्वरूप को नहीं जान करके आज तक दुख उठाया, आज आपका स्वरूप मुझे मालूम पड़ा और साथ में आपके स्वरूप के साथ मुझे यह मालूम पड़ा कि ऐसा ही स्वरूप मेरा भी है। मैं व्यर्थ ही यहां पर दुख उठा रहा था, यह मेरी ही अपनी कमजोरी थी, यह मेरी ही अपनी कमी थी, मेरे दुख का कारण मेरे भीतर था। आकुलित भयो अज्ञान धार ज्यों मृग मृग तृष्णा जानी वारी। और दूसरी चीज ये थी कि एक तो मुझे अपने दुख का कारण ठीक से ज्ञात नहीं था पहले, और उस दुख के चलते मैं और अधिक आकुल विकल हो जाता था अपने उस अज्ञान की वजह से। मैं ढूंढता था सुख पांच इंद्रिय और मन के विषयों में, पांच इंद्रिय और मन के विषयों के अभाव में मैं दुख पाता था, मुझे लगता था कि इनके अभाव में ही मैं दुखी हूं। और जब इनका सद्भाव हो जाता था तो मैं उनमें ही सुख ढूंढता था और अंततः फिर दुख में गिर जाता था, क्योंकि मृग इस कोशिश में कि शायद ये जो सामने चमकदार चीज दिखाई पड़ रही है वो जल ही है, भरा हुआ सरोवर है, क्योंकि रेत में बहुत तेज सूर्य की किरणें पड़ने पर ऐसा आभास होता है कि जैसे लहरें उठ रही हों किसी तालाब में। और हिरण प्यास के मारे उस चमक का पीछा करता है और दौड़ता दौड़ता उसी रेत में गरम गिर करके अपने प्राण त्याग देता है। मैंने भी ऐसा ही किया, आकुलित हुआ, इन सुख सुविधा के साधनों को पाकर के भी मैं आकुलित हुआ, क्योंकि जब ये मिल जाते हैं तब समझ में आता है कि ये तो और आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं। थोड़े मिले तो ज्यादा की आकुलता, ज्यादा मिल जाए तो उन संभलते नहीं है तो उनके संरक्षण की और उनके अभाव की चिंता मुझे घेर लेती है। ये मेरे लिए और अधिक आकुल करने वाले, सुख के कारण भी मुझे यहां आकुलता देने वाले अब समझ में आए, दुख का कारण भी यही है और सुख का भ्रम उत्पन्न करने वाले भी यही हैं। वास्तव में मैंने इनमें सुख दुख का विचार किया, ये मेरा अज्ञान था, ये मेरे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुखता का परिणाम था। सो आज आपके सम्मुख आकर के मुझे दो बातें बहुत स्पष्ट हो गई, मेरी दृष्टि बहुत निर्मल हो गई कि मैं अगर आपके स्वरूप को जान करके और वैसा ही स्वरूप मेरा है उसे प्राप्त करने के लिए उपाय करूं तो यहां संसार में कोई भी चीज का सद्भाव और अभाव मुझे दुखी नहीं कर सकता। और अगर यहां पर मैं संसार में चीजों में सुख ढूंढता हूं तो यह मेरा अज्ञान है, वो वास्तविक सुख नहीं है, वो तो और आकुलता उत्पन्न करने वाला है, वो सुखाभास है। ये भी मुझे भगवान जिनेंद्र के दर्शन से, उनके गुण चिंतवन से, उनकी भक्ति से, लेकिन मन में भाव तो आता है कि भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो इसका फल मुझे अवश्य प्राप्त होगा। भाई इससे बड़ा और क्या फल होगा कि मेरी आकुलता घट गई, मेरा अज्ञान हट गया। पता नहीं हम और कौन से फल की आशा करते हैं। जिसके जीवन में आकुलता जितनी कम है, जिसके जीवन में अज्ञान जितना घट गया है, उससे ज्यादा सुखी इस संसार में और कोई नहीं। ये अपन अपने अनुभव से भी देख सकते हैं। फिर भी मन में भाव तो आता है, तो वादीराज महाराज के चरणों में बैठे तो वो भी कहते हैं कि हाँ ऐसा विचार आ जावे तो भगवान से ही कह लो, वृत्तिर वाचा मपर सदृशी नत्वमन्येन तुल्यः स्तुत्युद्गारः कथमिव ततः स्त्वय्यमीनः क्रमन्ति मैवं भूतं भुवन तिलकं प्रावमं मैवं भुवन तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास्ते भव्यानाम अभिमत फला पारिजाता भवन्ति। जब जब मैं आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति आपका गुणगान करता हूं तो लगता है कि मैं कहां कर पाया आपकी स्तुति आपका गुणगान, मेरे शब्द में कहां आपकी प्रशंसा समा सकती है। वृत्तिर्वाचाम अपर सदृशी न तो अन्येन तुल्या, मैं वचनों के द्वारा आपकी किस तरह से स्तुति करूं, किससे तुलना करूं, मेरे वचन तो जड़ हैं और आप चैतन्य हैं, इतना बड़ा फर्क स्पष्ट नजर आ रहा है, और मेरे वचनों की क्या सामर्थ्य की जो आपका गुणगान करें। और सब और दूसरी चीज मन में यह भी विकल्प उठता है कि मेरे वचन आप तक तो पहुंचने वाले नहीं, अपने आत्मस्वरूप में वहां सिद्धालय में आप विराजमान हैं, मेरे वचन वहां तक कैसे पहुंचेंगे। स्तुत्युद्गारः कथमिव ततः स्त्वय्यमीनः क्रमन्ति, कहां तक कैसे पहुंचेंगे आप मेरे वचन आप तक। अरे भाई कोई व्यक्ति सामने होवे और हम दुखी हों और उससे अपने दुख को कह दे में तो हो सकता है कि थोड़ा वो हमारे प्रति उपकार का थोड़ा बहुत विचार भी करे, उसने हमारी बात सुन ली है सो हमारा थोड़ा बहुत भला भी करे, लेकिन आप तो हमारे वचन ही आप तक नहीं पहुंचने वाले, तो हमारा उपकार क्या करोगे आप, ऐसा मन में विचार आ जाता है। लेकिन मैवम भूवंस तदपि भगवन भक्ति पीयूष पुष्टास, मत पहुंचो भगवान, मेरे वचन आप तक नहीं पहुंचे कोई हर्जा नहीं है, लेकिन भक्ति भाव से भरे हुए ये जो वचन है, ये जो मेरे भक्ति का उद्गार है, पीयूष पुष्टाह अमृत से भरा हुआ है, पारिजाता अवंती, ये तो मेरे लिए स्वर्ग के जैसे कल्प वृक्ष जिनको पारिजात कहते हैं उसके समान है, मैं इस भक्ति के माध्यम से जो मांगूंगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। मांगने योग्य क्या है ये पहले देख लेना, इसलिए लिखा हुआ है कि जो मांगने योग्य है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, जो पाने योग्य है, और पाने योग्य तो यहां इस संसार में मैं पहले ही जान चुका हूं कि यहां पाने योग्य कुछ नहीं है अपने सिवाय, यहां अपने आत्मस्वरूप के अलावा और कुछ पाने योग्य नहीं, ये तो आपके दर्शन करके मुझे पहले ही स्मरण में आ गया, अभी तक तो मैं और सब चीजें पाने के ख्याल में और भूला हुआ था और दुख उठा रहा था, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुमको बिन जाने जो कलेश। अब आपको जब जान लिया है तो चाहूंगा क्या, चाहूंगा वही जो आपने प्राप्त किया है, और वो मुझे आपकी भक्ति से सहज रूप से प्राप्त हो जाने वाला है। मेरे वचन आप तक पहुंचे या ना पहुंचे, मेरी वाणी में मेरे वचनों में आपका स्वरूप समा पाए चाहे ना समा पाए, लेकिन मेरी ये जो आपके प्रति भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो भावना की पवित्रता है, निर्मलता है, वो जरूर जो है मुझे अपने अभिमत फल को, मेरे मन चाहे फल को प्राप्त कराने में कारण बनेगी। ऐसी आत्मविश्वास से भरकर अगर भक्ति की जाती है, वो भक्ति भी हमारे चित्त को निर्मल करती है भाई, हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनती है, हमें बहुत सारी विपत्तियों से बचा लेती है। एक सेठ जी अपना मंदिर खुद बनाया, उसमें पूजा पाठ करते थे, 20-25 वर्ष गुजर गए पूजा पाठ करते। एक दिन ऐसा हुआ कि लुटेरों ने उनके घर आकर के उनको लूटना चाहा, तो सेठ जी ने कहा कि भाई संपत्ति ये रखी है ले जाओ। उन्होंने कहा अकेले संपत्ति से नहीं, आपके प्राण भी हम लेंगे। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, प्राण लेते हो तो प्राण भी ले लो, लेकिन जरा थोड़ा ठहरो, ये जो भगवान की मूर्ति है सो हमारे साथ चलो, हम इसको पहले गहरे पानी में विसर्जित कर देवें, फिर हमारे प्राण लेना चाहो उससे ले लो। डाकुओं ने कहा कि भाई ऐसा कैसे, तो कहते इसलिए ऐसा मन में विचार आ रहा है क्योंकि वर्षों गुजर गए हमारी भगवान की पूजा करते, और हम ऐसे ही भगवान को छोड़ जाएंगे, अब कौन उसका पूजा पाठ करेगा पहली बात, और दूसरी ये कि चार लोग ये कहेंगे कि देखो इनने जिंदगी हो गई पूजा करी का मिलो, ऐसे लुट गए और प्राण निकल गए इनके, सुको कर है पूजा को, तो धर्म की भी हंसी हो। धर्मात्मा को चिंता होती है अपने धर्म की हंसी की भैया, वो बाकी तो सब जने धर्म की हंसी उड़ाऊ अपने ही, धर्मात्मा होगा तो नहीं उड़ाए, और उनको अपनी इस बात की चिंता है कि कल के दिन भगवान जिनेंद्र की पूजा कौन करेगा, जब मुझे मरण को प्राप्त तो लुटते देखेगा कोई तो कहेगा कि भैया हमें नहीं करना, इनने 2500 साल करी, इनकी जा स्थिति भाई तो हमारी का हुई है, ऐसा ना ले ले कोई उसका अर्थ, इसलिए पहले हम भगवान को विसर्जित कर दें फिर हमारे प्राण ले लेना, संपत्ति तो तुमने ले ली। जंगल के रास्ते से चले जा रहे हैं, नदी पास में ही है, मूर्ति हाथ में है, रास्ते में शिला पर बैठे हुए मुनिराज के दर्शन हो जाते। मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे, राजा सेठ को देख करके बिना कुछ पूछे ही उन्होंने कहा कि सेठ चिंतित और विचलित मत हो, तुम नहीं जानते ये जो चार लुटेरे तुम्हें लूटने और तुम्हारे प्राण लेने आए हैं, इन चारों के प्राण तुमने पूर्व जीवन में एक साथ लिए थे, सो इस जीवन में भी वह अभी तुम्हारा ऋण बाकी है, पर वह घट गया है। तुम्हारे भगवान की भक्ति और पूजा से कर्मों की निर्जरा इतनी हुई कि ये चारों एक साथ मिलके एक ही बार में तुम्हारे प्राण ले रहे, वरना चार भाव धारण करके अलग अलग चार बार मरना पड़ता। इसलिए चिंतित मत हो, व्यथित मत हो, हिसाब चुकता हो रहा है। ऐसा सुनते ही डाकू भी चकित हो गए, सेठ जी तो चकित हुए ही, और डाकुओं ने कहा कि जब सेठ जी को अपने किए का फल यहां मिलेगा तो अब हम सेठ जी को पुनः यहां पर मारेंगे तो हमें फिर अगले बार यही फल मिलेगा। जब तीन भाव छूट गए भगवान की भक्ति से तो एक हम भी छोड़ देते हैं, हमारे जीवन में भी ये भक्ति इतना लाभ देकर के जा रही है। भाई दिखाई नहीं पड़ता है कई बार फल, तो अपने को लगता है कि क्या है इन सब चीजों में, इस पूजा पाठ में, इस भक्ति में, लेकिन अगर कोई वास्तव में अपने परिणामों को शांत कर ले भक्ति के माध्यम से, अपनी आकुलता को घटा ले, घटती ही है, तो यही तो उस भक्ति का लाभ है जो इस जीवन में मिलता है। और इतना ही नहीं, अगर परिणाम अच्छे होते हैं तो कर्मों के बंधन से हम बच जाते हैं और कर्मों की निर्जरा भी होती है। ये बहुत बड़ा लाभ आगामी जीवन में भी इस भक्ति से प्राप्त होता है। और भगवान क्या सचमुच हमारे लिए कुछ लेते देते हैं? नहीं भैया, हम ऐसे भगवान में श्रद्धा नहीं रखते जो लेते देते हो, जो लेन देन से पार हो गए संसार के भी हमारे भगवान हैं, जो न वे संसार के लेन देन में लगे हैं उनको हमने भगवान माने ही नहीं। हां, जिनको किसी पर स्नेह उमड़ जाए, प्रेम उमड़ जाए तो उसको वरदान दे देवे, और किसी के प्रति गुस्सा हो जावे तो उसको श्राप दे देवे, तो भैया जी अबे उनको संसार घटो नहीं है, अबे तो संसार ही में है। कोपावेशो न तब कापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस तभी परमोपेक्षैवानपेक्षम आज्ञावश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर वैरहारी कैवम भूतम भुवन तिलक प्रावम तत्परेशु। भगवान एक चीज और आपके भीतर दिखाई देती है, कोपावेशो न तब, किसी से भी आपका गुस्सा या नाराजगी नहीं है, न तब प्रसादो, किसी पर भी आप अतिरिक्त कोई कृपा नहीं करते, यानी न किसी को वरदान देते हैं प्रसन्न होकर के, न नाराज होकर के किसी को श्राप देते हैं। कोपावेशो न तब कापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस तभी परमोपेक्षैवानपेक्षम, अत्यंत उदासीन है आपकी चित्त प्रवृत्ति, अर्थात सबके प्रति आपके मन में साम्य भाव है। सैनिक महाराज मुनि राज के ऊपर उपसर्ग करते हैं, गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं, और महारानी चेलना आकर के उपसर्ग दूर करती हैं, लेकिन उपसर्ग दूर होने पर मुनि महाराज दोनों को समान भाव से आशीर्वाद देते हैं। ये है भगवत्ता की तरफ बढ़ने का प्रयास, जहां की साम भाव है, जहां की उदासीनता है, राग द्वेष से परे वीतराग भाव है, वहां पर भगवत्ता है। ऐसे आप हो भगवान, और कल देखना आप उस सेठ जी के साथ में राजा आएंगे मेरे दर्शन करने के लिए, और देखेंगे कि मेरी देह कुष्ठ की है या कि स्वर्ण कुष्ठ रोग से ग्रसित है या कि स्वर्णमयी हो गई है, सो मुझे विश्वास है कि कल वो देह स्वर्णमयी उनको दिखाई पड़ेगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिन्होंने शिकायत करी थी उनका आहित हो जावे, इसलिए पूरी देह सोने की नहीं, थोड़ा सा कुष्ठ शेष रहना चाहिए। तो निंदक और बंदक दोनों पर साम भाव रखने की। कल जिन्होंने निंदा करी थी उनको भी आशीर्वाद देऊंगा, कल जिन्होंने मेरी जय जयकार और प्रशंसा करी थी उनको भी आशीर्वाद देऊंगा। आप भी मुझे यही उपदेश देते हैं भगवान की, निंदक और वंदक दोनों पर साम भाव रखना। आप इसीलिए बड़ा आश्चर्य होता है कि जो अपना आतंक बना करके रखें उनके वश में संसार रहता है, या कि जो सब पर कृपा भाव रखें उनके वश में रहता है, लेकिन ना आप किसी को वरदान देते ना अभिशाप देते, फिर भी आज्ञा वश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर वैरहारी। सब जीव ऐसा मालूम पड़ता जैसे आपकी आज्ञा में हो, आपके चरणों में आकर के अपना जन्म जात बैर भाव भी भूल जाते हैं। समो शरण में जीव जाकर के तिर्यंच भी जो एक दूसरे के जन्म जात बैरी होते हैं अपना बैर भूल जाते हैं। तो वादी राज महाराज कल्पना कर रहे हैं कि जैसे भगवान ने सबको आज्ञा दी हो कि सब यहां पर शांत रहना, अपने आप ही बिना आज्ञा दिए ही वे आज्ञा में हैं। ऐसी हमने शक्ति, ऐसा प्रभाव तो हमने भगवान और किसी का कहीं नहीं देखा। दुनिया में अपना आतंक फैला करके दूसरे को वश में करने वाले बहुत देखे, दुनिया को कोई लालच देकर के वरदान देकर के अपने अपने अंडर में रखने वाले भी बहुत लोग देखे, लेकिन इतनी उदासीन वृत्ति रखने वाले की आज्ञा में सब चलें, ऐसा प्रभाव तो आपका ही हमने देखा है। और यही वास्तव में हमारे लिए भी अनुकरणीय है, हमें भी इसी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन में भी ऐसा ही साम भाव, ऐसी ही वीतरागता आ जावे तो हमारा जीवन आज भी इसी क्षण सुखी है। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते कि जितनी जितनी आकुलता घटे उतना उतना मोक्ष आज भी है, क्योंकि तीसरी ढाल में क्या लिखा है, आत्म को है सुख हित है, आत्म को हित है। थोड़े आगे पीछे कह दे, इसो तो सबको आउत है, हम यहां भूल जाते। हाँ वो तो सबको आउत है, बता मालूम है, हम भूल गए भैया, गलती आपने संभाल ली है, सही समारत रही हो, अपनी सुई समारत रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बन गई, और आकुलता शिव माही लता, आकुलता एक ही जगह है जहां नहीं है। सो यहां भी अगर हम थोड़ी आकुलता घटाएं तो कहां पहुंच गए, समझ लो कि मुक्ति का ही आनंद हमने ले लिया, निराकुलता ही मुक्ति का आनंद है। सो जैसे जैसे हमारी आकुलता घटती जाए, आकुलता कैसे घटेगी, ऐसे ही घटेगी कि हम किसी को हितैषी मान करके उस पर प्रसन्न हो जाते, किसी को अपना बैरी मानकर उस पर नाराज हो जाते। भैया इसी राग द्वेष में तो लगे भगवान, देखो न किसी को बैरी मानते न किसी को सगा मानते, सबको समान मानते, सबके प्रति समान भाव है, वीतराग भाव है, यही उनके सुख का कारण है। ऐसी ही वीतरागता, ऐसा ही साम भाव हमें भी भक्ति के माध्यम से प्राप्त हो, जिससे कि हम भी इस संसार में और वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकें। हमारे अंदर भी ऐसी भावना भक्ति करते समय आनी चाहिए। वास्तव में तो देखा जाए, जिसकी सबके प्रति सद्भावना होती है तो सब उसकी आज्ञा में रहते हैं। अपन संसार में भी इस चीज को देखते हैं कि जो सबके प्रति प्रेम भाव रखता है तो उसके जरा से इशारे पर सब लोग जो है और सब बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके 100 लोग हैं तो वो अपन कहते ना कई बार कि भैया हम तो कोई से तनक के हैं समाओ, तो हमारे तो बहुत से लोग हैं, किस बात से लोग हैं, आपने उनको कछु दाव है ऐसे हैं का, या कि तुमने उनको कछु दबाव में डाल के काम करवाया है, नहीं, प्रेम भाव से सद्भाव से। और अगर साम भाव आ जावे, साम भाव हो जा आ जावे तो सब जीव जो है अपने आप स्वयमेव ही आज्ञा में हो जाएंगे। यही कहना चाह रहे हैं यहां वादी राज महाराज कि कल लोग आकर के अगर मेरी पूजा करेंगे, कल तक निंदा करते थे तब भी मुझे दोनों स्थितियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं समझ में आ रहा है, दोनों के प्रति ही आपने जैसा साम भाव रखा मेरे अंदर भी दोनों के प्रति वैसा ही साम भाव है। एक छोटी सी घटना उसके बारे में मैंने कहीं पर पढ़ी थी, वे एक काशी नरेश और एक कौशल नरेश दोनों की प्रसिद्ध घटना है। काशी नरेश जो है थोड़े ईर्ष्यालु थे, कौशल नरेश सबके प्रति सद्भाव रखते थे, जितने भी प्रजाजन थे सबका बड़ा उपकार किया, सब उनके बहुत गीत गाते थे, इस बात से बहुत ईर्ष्या होती थी काशी नरेश को, तो बिना वजह के आक्रमण कर दिया। आज भी वर्तमान में देखते कि को अपनी गैल सीधी सीधी चले तो वो सीधे नहीं चलन दे आदमी, चार जने टोका टोकी करे, चार जने उसकी मुश्किल डालेंगे, संसार में तो हमेशा ये चलता रहता, ईर्ष्यावश जो है कि कायन को सब अच्छो होगा। अब जय दिक्कत उनको, अब कछु नहीं आए ने कछु, लेकिन नहीं काय अच्छो चल, तो उनने आक्रमण कर दिया। कौशल नरेश तो इस बात के लिए तैयार नहीं थे इसलिए, और उनको पराजित होकर के और जंगल में जाना पड़ा। जंगल में कौशल नरेश भले ही चले गए लेकिन उनकी प्रजा जो है जिसके अधिपति बन के बैठ गए थे काशी नरेश, आज भी प्रशंसा करती थी तो कौशल नरेश की ही प्रशंसा करती थी, इस बात से भी और तिल मिला जाते थे, अरे हमारी अब हम जे हार भी गए और हम तुम्हारे राजा हो गए फिर भी प्रशंसा तो मुनि की करते हो। तो उन्होंने जो है घोषणा करवा दी कि जो भी जीवित या मृत अवस्था में कौशल नरेश को लेकर के आएगा उसको हम मुंह मांगा वरदान देंगे, या कि जो मांगेगा वो देंगे। अब इस बीच ये हुआ कि जहां जंगल में कौशल नरेश थे अभावग्रस्त अवस्था में, वहीं पर भटकता हुआ एक व्यापारी पहुंचा और कौशल नरेश से ही पूछा कि कौशल देश कहां पर है, मैं रास्ता भटक गया हूं। वो पहचान नहीं पाया कौशल नरेश को, तो कौशल देश पूछ रहा है। राजा ने कहा कि भाई क्यों जाना चाहते हो कौशल नरेश के पास, उस देश में क्यों जाना चाहते हो? उसे तो मालूम नहीं था कि राजा हार गए हैं और देश दूसरे के हाथ में चला गया है, वो तो सहज भाव से पूछ रहा था। तो उसने कहा कि मैं बहुत विपत्ति में पड़ा हूं पर मुझे विश्वास है कि मुझे विपत्ति से अगर इस संसार में कोई बचा सकता है, मेरी मदद कर सकता है, तो कौशल नरेश ही कर सकते हैं, और तो कोई नहीं है। अब बड़े व्यथित हुए कि मैं मेरी दीन अवस्था और ये मेरे ऊपर इतना विश्वास रखता कि मदद कर सकते तो यही कर सकते, मैं क्या करूं? तो फौरन उनसे कहा कि आओ मेरे साथ चलो, और उस व्यापारी को लेकर के काशी नरेश के दरबार में पहुंच गए। काशी नरेश तो देख करके दंग रह गया कि अरे ये अपने आप कैसे आ गए, हमने तो इनके लिए जीवित या मृत अवस्था में जो लेकर के आएगा उसको मुंह मांगा दान देंगे ये घोषणा कराई थी, ये तो स्वयमेव आ गए। तो इसके पहले कि काशी नरेश कुछ कहें, कौशल नरेश ने कहा कि राजन मेरे ऊपर जो इनाम है वो इस व्यापारी को दे दिया जाए, मैं आपके सामने आकर के और अपने को सौंपता हूं, आप यही चाहते थे, लेकिन जो भी आप देना चाहें इस व्यापारी को दे दे। समझते देर नहीं लगी, काशी नरेश उतर करके सिंहासन से आए, उनका राज तिलक करके सिंहासन पर बिठा दिया कि आप हो राजा, अब जो देना हो इस व्यापारी को आप ही दो। ये घटना पढ़ करके मुझे लगा कि सचमुच अगर हमारे मन में सबके प्रति सद्भावना है तो सारा संसार हमारा है और सारे संसार हमारी आज्ञा में है। जैसे कि भगवान की भक्ति करते हुए वादीराज महाराज कह रहे कि किसी पर अपनी आज्ञा चलाना ये तो संसार बढ़ाना है, अगर हम अपने इंद्रियों और मन को जीत लें और सब प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव हमारे भीतर में हो तो सारा संसार आज्ञा के वशीभूत है। भाई जिसका मन ही अपने वश में नहीं है उसके वश में क्या कोई होगा। हमें भगवान जिनेंद्र यही शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति के माध्यम से हमें उनसे यही उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि हम भी उनके समान और इस राग द्वेष से बच करके साम भाव या कि वीतराग भाव को धारण करके और अपना और प्राणी मात्र का कल्याण करें तो हमारी ये भक्ति हमारे जीवन को सार्थक करने में कारण बनेगी। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जग में रच पच कर गाफिल निद्रा में सो
लेकिन भगवान के चरणों में बैठकर जब हम उनकी भक्ति करते हैं उनका गुणगान करते हैं तो हमारे भीतर एक विचार सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है कि नहीं कितना कुछ भी हो लेकिन हम भी भगवान के जैसी निर्मलता और प्राप्त कर सकते हैं। ये जो श्रद्धा और भक्ति है वो सबसे बड़ा काम करती है कि हमारे भीतर उस सकारात्मक सोच को उत्पन्न करके और हमें ऊंचा उठाने में बहुत मदद करती है। कोई अगर अपने से हार जाए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो ऊंचा बन ही नहीं सकता, मैं तो अच्छा बन ही नहीं सकता, तो मेरी जिंदगी तो पूरी बुराइयों में निकल गई। कितनी तो घटनाएं सुनते हैं कि पूरा जीवन और बुराइयों में निकल जाता है लेकिन एक क्षण भी उन बुराइयों से हम विमुख हो जाते हैं और अपनी अच्छाई के सम्मुख हो जाते हैं और हमारे भीतर अपने जीवन को अच्छा बनाने का जो एक सकारात्मक विचार है वो अगर उत्पन्न हो जाता है तो कोई वजह नहीं है कि फिर हम अपने जीवन में निराश होकर के और अपने जीवन से हार जाएं। तो श्रद्धा और भक्ति ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए उपकार करती है, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें एक सकारात्मक सोच देती है। एक छोटा सा उदाहरण जिससे कि समझ में आए। एक राजा का बहुत प्यारा मंत्री था लेकिन उस मंत्री की एक बात भर राजा को जरा ठीक नहीं मालूम पड़ती थी कि कभी भी कुछ भी हो जाए भला बुरा मंत्री के मुंह से यही निकलता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो राजा को यह सुनकर के कभी कभी तो ठीक लगता था लेकिन कभी लगता था कि ऐसा कैसे। एक बार ऐसा हुआ कि राजा की हाथ की उंगली कट गई और जब राजा ने कहा कि मंत्री जी देखिए मेरे हाथ की उंगली कट गई तभी मंत्री जी ने कहा कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता। अच्छा मेरी उंगली कट गई और आपको लग रहा है जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता, अब तो गुस्सा आ गया। तो राजा ने कहा कि अच्छा अब इसको मैं कभी न कभी इसके लिए बताऊंगा और गुस्से में आकर के उन्होंने कहा कि इस मंत्री को और कुएं में डाल दिया जाए, पड़ा रहेगा वहां पर। तो मंत्री को जब ले जाके कुएं में डालने लगे तो मंत्री ने यही कहा कि जो भी होता वो अच्छे के लिए होता। राजा को गुस्सा तो वैसे ही थी और गुस्सा आया कि अभी भी वो यही कह रहा है मैं उसको कुएं में डाल रहा हूं फिर भी कह रहा है कि जो भी होता अच्छे के लिए होता। छोड़ो अब मंत्री की तरफ से ध्यान हटा करके राजा ने अपना 2-3 दिन के भीतर प्रोग्राम बनाया कि चलेंगे जंगल में और शिकार खेलने के लिए। तो राजा जाते हैं अपने और सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए, और होता यह है कि वो सैनिक पीछे रह जाते हैं, राजा कहीं दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं और बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। वहां पर जो भीड़ लोग थे वो राजा को पकड़ लेते हैं, राजा बहुत सुंदर थे तो वो ये सोच करके पकड़ते हैं कि इतना सुंदर व्यक्ति है और इसको अगर हम बलि चढ़ा देंगे तो हाँ, ऐसा कई लोगों को प्रचलित है इस तरह की चीजें, बड़ी अजीब अजीब तरह की चीजें हैं संसार में, आप आश्चर्य करेंगे। कल मेरे सामने से और वो बिल्ली एक चूहे को पकड़ करके निकली तो कई लोगों का मुंह बन गया, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जब किसी मनुष्य को मांस खाते देखते तब उनका मुंह नहीं बनता, उसके बाजू में बैठ के मांसाहारी होटल में खा लेते हैं, बड़ा मजा है। ध्यान आपको कल का कैसा लग रहा था उस समय, गरी उसका तो वो भोजन है और हमारा तो भोजन तो शाकाहार और हम खाने लगते हैं मांस, तो हमें घृणा नहीं होती देख करके और खाते समय भी। ऐसे ही है संसार, अभी तो सुनकर लग रहा होगा कि कैसी वाली चीज सुना रहे हैं, वो बलि देने के लिए कह रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। चलो कम से कम इतना ही अच्छा है कि ठीक को ठीक मानते हैं और ठीक नहीं है उसको ठीक नहीं मानते फिर भी करते हैं, ये बात अलग है। पर इतने ही गनीमत है कि ठीक को ठीक मान रहे हैं और जो ठीक नहीं उसे ठीक नहीं मान रहे हैं, ऐसा ना हो कि जो ठीक नहीं उसको भी ठीक मानने लगे, अभी इतना बचा हुआ है। यही श्रद्धा और यही आस्था है। अब क्या हुआ कि वो राजा साहब पकड़े गए और जब उनको ले जाया गया तो उनके हाथ की उंगली कटी हुई थी, तो रिजेक्ट, अब नहीं चढ़ाया जाएगा उनके लिए, नहीं मारा जाएगा। अब राजा साहब को लगा कि मंत्री है तो बहुत होशियार, सही कहा था मंत्री जी ने कि जो भी होता अच्छे के लिए होता है, अगर वो मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज तो मैं जान से ही चला गया था। फौरन वापस आकर के मंत्री जी को निकलवाया उसमें से, कुएं में से, और कहा मंत्री जी आपकी बात तो बिल्कुल सही निकली, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक बात है कि मेरी उंगली कटी, मेरे प्राण बच गए, ये तो ठीक हुआ, लेकिन आपको मैंने कुएं में डलवा दिया, इसमें कौन सा अच्छा हुआ जो आप कह रहे थे कि कुएं में डालने से भी अच्छा हुआ। बोले राजा साहब अगर मैं आपके साथ होता तो मेरी तो चली गई थी, अच्छा हुआ कुएं में डाल दिया था आपने, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, आपकी उंगली का कटना भी अच्छे के लिए हुआ और आपका मुझे गुस्सा होकर कुएं में डालना भी अच्छे के लिए। बताइए ये सकारात्मक सोच है कि नहीं, ये कैसे पैदा होता है हमारे भीतर, ये श्रद्धा और आस्था से पैदा होता है। जब हमारी हमारे स्वरूप के प्रति श्रद्धा होती है तब आध्यात्मिक दृष्टि से देखें कि जो व्यक्ति वितरागता के प्रति श्रद्धा रखता है, संसार में होने वाले राग द्वेष के फलस्वरूप जो सुख दुख है, हर्ष विषाद है, उनके उनके पीछे उसे साम्य भाव ही रखने का मन होता है कि ठीक है जो भी है ठीक है। ऐसा विचार कहां से आया, उसी वितराग मुद्रा के दर्शन से, उसी के प्रति श्रद्धा और आस्था से। और इतना ही नहीं, ये श्रद्धा और आस्था निश्चिंतता बहुत देती है। देखिएगा वो मंत्री जी कितने निश्चिंत थे इस बात के लिए, और कुएं में पड़े हुए हैं फिर भी उनको कोई आकुलता और विकलता नहीं है मन के भीतर। कितनी निश्चिंतता व्यक्ति को मिलती है कि कोई है जो हमें संभाले हुए, सबसे बड़ी चीज कहीं हम अगर समर्पित हैं, कहीं हम आस्था से भरे हुए हैं तो हमें फिर ये एहसास होने लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, कोई है हमारे साथ है और वो हमें संभाल लेगा। हालांकि हमारा विचार, हमारी श्रद्धा ही हमें संभालती है, कोई और नहीं संभालता हमारे लिए, लेकिन वो जो श्रद्धा है और वो जो विचार है वो हमें संभाले रहता है और हमें लगता है कि जैसे कोई हमें संभाले। हनुमान जी, एक बार कहीं पढ़ा था मैंने, घटना आती है कि रामचंद्र जी को कंधे पर बिठाल करके और कहीं ले जा रहे थे। अब देखो इस झगड़े में नहीं पड़ना कि ले जा रहे थे कि नहीं, क्योंकि उस समय अपन लोगों में से कोई भी नहीं था, वो मुनीश्वर रत्नाथ भगवान के समय में हुए थे, बहुत पहले होंगे 24वें तीर्थंकर। अब वो ले जा रहे होंगे मान लो अपन, और कंधे बिठा के ले जा रहे थे, विद्याधर थे, विद्या के माध्यम से वो जो चाहे वो कर सकते। तो अब जब कंधे पर बिठा के कोई को ले जाएंगे तो डेफिनेट है कि वो कंधे को और पकड़ के बैठेगा। तो हंसी हंसी में रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान आप तो मुझे कंधे पर बिठा के ले जा रहे, लेकिन राजा दशरथ तो मुझे गोद में उठा के चलते थे जब मैं छोटा था, तब मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो हनुमान जी ने मालूम क्या जवाब दिया, दशरथ जी बड़े हैं, वो आपके पिता हैं, वो आपको संभाल सकते हैं, इसलिए वो आपको गोद में संभाले हुए रहे, लेकिन प्रभु मैं तो बहुत छोटा हूं, आपको कंधे बिठा ले हूं, मैं क्या संभालूंगा, आप ही मुझे संभाले रहिए, पकड़े रहिएगा। ये क्या चीज है, मैं इसको पढ़ करके मुझे लगा कि ये तो बहुत एक स्थूल उदाहरण है, लेकिन इसके पीछे क्या भाव छिपा हुआ है कि हम कहीं ना कहीं अपने को श्रद्धा और आस्था से भर करके जब समर्पित कर देते हैं तब इतनी ही निश्चिंतता और इतना ही हमारे भावों में निर्मलता अपने आप ही आ जाती है, और हम बहुत सारी उलझनों से संसार की बच जाते हैं। एक प्रॉक्सिमिटी, एक नियरनेस, वो हमें हमेशा महसूस होती रहती है कि कोई है जो कि हमें हर स्थिति में संभाल लेगा। आज संसार में देखिएगा व्यक्ति चाहता क्या है, बताइए, कितने सारे संबंध बनाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहां जल्दी से कोई ना कोई हमारे मन का मिल जाता है, उससे बात करने लगते हैं, काहे के लिए, कहीं हम अकेले ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी हमारे आसपास हमारा अपना ना हो। हर व्यक्ति कोई कहीं भी जाएगा, घर में भी रहेगा तब भी सारे लोग अगर घर में हो और किसी के प्रति भी अगर अपनेपन का भाव नहीं है तो उस सारे लोगों के बीच भी क्या लगता रहेगा, जैसे होना नहीं होना, मैंने व्यर्थ ही है, जैसे कि जीवन ही व्यर्थ हो। क्या चाहते हैं हम हमेशा यहां चाहते हैं इस संसार में एक सहारा, एक शरण, और वो कैसे मिलती है, वो हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था हमें स्वयं ही शरण देती है। अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से हम स्वयं सहारा पा लेते हैं और शरण पा लेते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति जिस पर हम पिछले दिनों से निरंतर विचार कर रहे हैं, हमारे जीवन को इतनी ऊंचाई तक ले जाने में कारण बनती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन हमारे साथ है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम किसके साथ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के केवल ज्ञान में सभी जीव झलकते हैं, यानी अगर दूसरे तरह से सोचें तो भगवान के ज्ञान में तो हम सब हैं, या और दूसरे तरह से सोचें तो भगवान तो सबके पास हैं, सबके साथ हैं। ऐसा अगर थोड़ा सा विचार कर लें अपन तो सर्व व्याप्तता के मायने क्या है, वो सबके निकट है, लेकिन उनके सबके निकट होने से काम नहीं चलेगा, हम उनके कितने निकट हैं या उन्हें हम अपने कितने निकट महसूस करते हैं ये महत्वपूर्ण है। कौन किसके साथ है या किसने किसका साथ लिया है, प्रिय वचन की टेव हो या नहीं, वो लाइन दूसरी, रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में मन रंगा, ये महत्वपूर्ण है कि मैंने किसकी संगति की है, कौन मेरे साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने किसका साथ लिया है ये महत्वपूर्ण। एक बेटा नाराज हो गया अपने पिता से, वो अभी तक भोजन करता था पिता के साथ में, और नाराज होकर उसने पहला स्टेप यही उठाया कि हम पिताजी हम आपके साथ भोजन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन देखा कि भोजन की थाली पर जब बेटा बैठा तो अपनी थाली उसने अलग लगवा ली। अभी तक तो पिता की थाली में ही खाता था, अपनी अलग लगवाई, और जैसे ही खाना शुरू हुआ उसके पहले ही पिता आकर के उसके सामने बैठ गए और उसकी थाली में से खाने लगे। तो उस बेटे ने कहा कि मैंने आपसे कह दिया था कि मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। बोले ठीक तो है, तुम्हारे साथ मत खाओ, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ खा सकता हूं। आया समझ में? ठीक ऐसे ही कोई हमारे साथ है या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम किसके साथ हैं? हम भगवान के साथ हैं कि नहीं? वो कैसे होते हैं? हम अपनी आस्था से, अपनी श्रद्धा से हम उनके साथ हो जाते हैं। एक और छोटा सा उदाहरण है, आज मन छोटी छोटी सी बातें करने का है। आज मैं बिल्कुल भी संडे जैसे मूड में नहीं हूं कि मैं बहुत बड़ी सी कोई एक चीज विस्तारूं। नहीं, आज छोटी छोटी बातों से अपन कुछ सीख लें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। एक गुरुजी थे, उनका शिष्य उनके साथ में रहता था, हर समय रहता था। शिष्य की श्रद्धा तो अपने गुरुजी पर बहुत थी, लेकिन कभी कभी शिष्य के मन में भी आ जाता था गुरु के प्रति कि सचमुच मैंने इनको गुरु माना है, इनके अंदर कोई सामर्थ वगैरह है कि नहीं। अच्छा, अपन लोग सामर्थ किसको समझते हैं? मानो कुछ काम बनवा दे हमारा, हाँ तब तो सामर्थवान कहलाएंगे, ऐसे थोड़ी कहलाएंगे। या कि कोई सेरवे आ जावे तो उससे भी नहीं डरे, ऐसा ऐसी सामर्थ। तो जब वो एक बार जंगल में गुरुजी के साथ चला जा रहा था तो ध्यान का समय हो गया, तो गुरुजी ने कहा कि ध्यान में बैठ जाओ, और गुरुजी ध्यान में बैठ गए। अब शिष्य का मन तो ध्यान में लग नहीं रहा था क्योंकि जंगल का मामला है, भीतर जो है डर तो था। श्रद्धा होती है तो निश्चिंता रहती है, अनिश्चितता नहीं रहती, भय नहीं रहता, क्यों? कोई हमारे साथ है, ये एहसास हमेशा बना रहता, वो हमें सेफ करेगा। अपन लोगों के अंदर इतनी मजबूत नहीं है श्रद्धा, अपने से टैली।